प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नास का नमस्कार। हमेशा की तरह आज के संक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिसका है आपसे सरोकार। और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत। गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वेल फर्स्ट we'll share with you the latest in national and international news, then we'll also provide you metro city updates, and then some historical information which is related to today. And today, listeners, it's 14th of September. First, let's begin with the headlines.
जी शगुन, बिल्कुल। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के जुड़ी खबर के लिए बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 18,530 करोड़ रुपए की प्रमुख ढांचागत और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहला कार्यक्रम दरांग में होगा, जहां श्री मोदी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज परियोजना और इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं शामिल। राजधानी गुवाहाटी में यातायात सुविधा बढ़ाने, भीड़भाड़ कम करने, संपर्क मार्ग में सुधार करने के लिए गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की भी आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल का भी शिलान्यास होगा। इससे इस क्षेत्र में संपर्क बढ़ेगा और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे असम के पेट्रो रसायन क्षेत्र को भी महत्व बढ़ जाएगा। इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इस क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा।
And Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of multiple development projects worth over 17,500 crore rupees during his day-long visit to northeastern states of Manipur and Mizoram yesterday. Well, in Manipur, the Prime Minister laid the foundation stone of several development projects worth over 7,300 crore rupees at Churachandpur and inaugurated various projects worth over 1,200 crore rupees at Imphal. Addressing the gathering in Churachandpur, Mr. Modi affirmed that the government is working with the goal of making Manipur a symbol of peace, prosperity and progress. He remarked that unfortunately violence had gripped the remarkable state, but expressed confidence that a new dawn of hope and trust is arriving in Manipur. From the soil of Manipur, the Prime Minister also addressed his friends in Nepal. He congratulated Sushila Karki on assuming office as the Prime Minister of Nepal's interim government. Nepal's former Supreme Court Chief Justice Sushila Karki became the Prime Minister of the interim government after anti-corruption protests ousted KP Sharma Oli government. Mr. Modi exuded confidence that Ms. Karki will pave the way for peace, stability and prosperity in Nepal. He said, nestled in the lap of the Himalayas, Nepal is a close friend and trusted partner of India, and emphasized that both nations are bound by shared history, faith and a collective journey forward. Early in the day, Prime Minister Modi virtually inaugurated and laid the foundation stone of various developmental projects worth over 9,000 crore rupees at Aizawl in Mizoram. Well, these projects cater to multiple sectors including railways, roadways, energy, sports, among others. Mr. Modi inaugurated the Bairabi Sarang new rail line worth over 8,000 crore rupees, connecting the capital of Mizoram to the Indian Railways network for the first time. The direct rail connectivity between Mizoram and the rest of the country will offer the people of the region safe, efficient and cost-effective travel options.
और शगुन, वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा अगले आदेश तक फिर स्थगित कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। ये यात्रा आज से शुरू होने वाली थी। पिछले महीने की 26 तारीख को मूसलाधार बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन से कुछ घंटे पहले यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। श्राइन बोर्ड ने एक बयान में लोगों से अपील की है कि तीर्थ यात्रा के इच्छुक श्रद्धालु संचार माध्यमों से यात्रा के बारे में ताजा जानकारी लेते रहें। बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा स्थगित करने का भी फैसला किया गया है। और आज हिंदी दिवस है। इस दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है शगुन, और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा हिंदी ही है।
दैट्स अ ह्यूज नंबर फरत। एंड ऑन द ओकेजन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल इनॉग्रेट द 5th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात टूडे। गुजरात चीफ Minister Bhupendra Patel, he will also be present on the occasion, and our correspondent has the details.
More than 700 officials from various departments of central government will participate in the two-day Sammelan. Various sessions, including a special session on Operation Sindoor, will also be held during the Sammelan. Secretary Department of Official Languages Anshuli Arya said, the aim of the two-day conference is to increase the harmony and integration between Hindi and other regional languages. She said several initiatives, including a new multilingual translation tool called Bharti, will be launched during the Sammelan.
माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग में कई नवोन्मेषी कार्य हो रहे हैं। सबसे बड़ा है भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना, जिसके बाद से किसी भी राज्य से पत्राचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा में होना प्रारंभ हो चुका है।
अपर्णा खून, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद।
Listeners, now Farhat and me will provide you sports updates. First, in men's cricket, India will lock horns with Pakistan in a Group A clash of the ongoing T20 Asia Cup tournament at Dubai this evening. The match, it will begin at 8 p.m. and this is today. It's the first time since February this year that these two teams will share the field. The two teams head into the contest on the back of overwhelming wins against UAE and Oman. India defeated UAE by 9 wickets in Dubai on Wednesday, while Pakistan beat Oman by 93 runs at the same venue, this particular venue, on Friday. Meanwhile, Sri Lanka sealed a 6-wicket victory over Bangladesh in their Group B match in Abu Dhabi last night. The victory not only secured 3 points but also gave Sri Lanka's net run rate a significant boost, putting them in a strong position in Group B.
और शगुन, पुरुष क्रिकेट के बाद महिला क्रिकेट की बात कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज नया चंडीगढ़ में खेला जाएगा। ये मैच दिन में 1:30 बजे से शुरू होगा। आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट का विश्व कप भी इसी महीने शुरू हो रहा है, और इसी को देखते हुए ये श्रृंखला भारत के लिए अभ्यास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगी।
Now let's tell our listeners about the hockey update here. And India will take on host China in the title clash of Women's Asia Cup in Hangzhou this evening. The match will start at 5:30 p.m. Indian Standard Time. India played out a thrilling 1-1 draw against defending champions Japan in a critical Super 4 stage fixture yesterday. In the other Super 4 stage match, China defeated South Korea 1-0. Which turned out to be a boon for the Indian side, helping it advance to the final. India had started the Super 4 stage with an impressive 4-2 win against South Korea, but faced a setback against China, who won 4-1 on Thursday in their second Super 4's clash. With that, China had assured themselves of a place in the final, leaving India, Korea and Japan fighting for the other slot on the final day of Super 4's action yesterday. After the match between India and Japan ended in a draw, Japan were out of contention for the final. The winner of the summit clash will qualify for the next year's World Cup, scheduled to take place in Belgium and the Netherlands.
और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और महानगरों की खबरों का रुख कर लेते हैं। तो शगुन, सबसे पहले आपसे जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरें।
यस फरत, एंड द फर्स्ट अपडेट दैट आई हैव, इट इज अ रिमार्केबल डिस्कवरी। वेल, एन आर्कियोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास हैज डिस्कवर्ड अ प्री हिस्टोरिक साइट इन धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट। वेल, मोर देन 100 स्टोन एज टूल्स इंक्लूडिंग हैंड एक्सेस, बायफेशियल चॉपर्स एंड स्क्रेपर्स बिलीव टू बी फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड एज वेल एज scores and flakes from the microlithic period. They were found at Guddanahalli village in Palakkad block during field exploration. Well, N. Thilagarajan, a second year MA student of ancient history and archaeology at the University of Madras, researchers, they are planning to conduct further explorations in the area. How wonderful. I have another update from Chennai. The Oriental Insurance Company Limited celebrated its 79th Foundation Day by organizing events that reflected its commitment to social responsibility. A free medical camp was conducted at Shanti Bhavan, a home for the aged destitute in Chennai. The aged destitute, basically. The camp provided essential medical services to the residents and staff of the home, promoting their health and well-being. The company issued personal accident insurance policies to all its employees to demonstrate the company's dedication to protecting the welfare of its staff. We are now heading to Bengaluru. The Bangalore Development Authority Chairman N.A. Harris has assured to consider the possibility of donating free auto rickshaws to women and transgender persons who have successfully completed auto driving training. He was speaking at the inauguration of the free auto driving training program for transgender persons and women in his Bengaluru constituency today. The training program is organized by Bengaluru Political Action Committee or BPAC in collaboration with CGI, Global IT and Business Consulting Company, under CSR funding. Mr. Harris emphasized the importance of providing free autos to help the trainees earn a livelihood and promised to discuss the proposal with concerned authorities. Revati Ashok, the managing trustee and CEO of BPAC, announced that in the second phase, over 100 women and transgender persons, they will be trained. Now we are heading to Hyderabad. Telangana private professional colleges, including engineering and pharmacy institutions, announced an indefinite closure from tomorrow, protesting against the delay in release of free reimbursement arrears by the state government. The Federation of Associations of Telangana Higher Education submitted a notice to Telangana Council of Higher Education Chairman Professor V. Balakrishna Reddy in Hyderabad today. The Federation demanded release of pending fee reimbursement arrears to a tune of 8,000 crore rupees and sought to immediate disbursement of 1,200 crore rupees to already generated tokens for which budgetary allocation had been made. So Farhad, these were the updates from Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Now over to you for updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी शकुन, सबसे पहले राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं. दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे. समारोह के माध्यम से देश के कृषि विशेषज्ञ, विज्ञान और नीति निर्माताओं रबी फसल की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे. कृषि सम्मेलन विकसित कृषि संकल्प अभियान के दूसरे चरण का हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य रबी सत्र 2025-26 को उत्पादन और कार्य योजना के बारे में मार्गदर्शन करना है. वहीं आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ने इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव न लड़ने की घोषणा की है. छात्र संघ ने बताया है कि इस वर्ष उनका ध्यान संगठन निर्माण और कॉलेज स्तर पर मजबूती हासिल करना है. हालांकि एएसएसपी ने अगले वर्ष होने वाले छात्र संघ चुनाव में उतरने का भी निर्णय लिया है. दिल्ली के बाद अब मुंबई का रुख कर लेते हैं. मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध विवेकानंद एजुकेशन सोसायटी के कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय ने ओपन इलेक्टिव मेला 2025 नामक एक अभिनव पहल की मेजबानी की. इस मेले का उद्घाटन मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुलकर्णी ने किया. कॉलेज में 60 से अधिक ओपन इलेक्टिव विषयों की पेशकश के साथ इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को एक इंटरेक्टिव और आकर्षक तरीके से अपने विकल्पों का पता लगाने में मदद करना था. छात्रों ने खेलों, नाटकों, प्रदर्शनों और रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से विभिन्न इलेक्टिव विषयों के महत्व को प्रदर्शित किया, जिससे सीखने की प्रक्रिया मजेदार और सुलभ हो गई. इस आयोजन का एक विशेष आकर्षण मेंटरशिप साइकिल था, जहां वरिष्ठ छात्रों ने अपने कनिष्ठों का मार्गदर्शन किया और विभिन्न विषयों के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की, जिससे सहकर्मी सीखने और ज्ञान के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया गया. वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि पिछले 15 वर्षों से अनुकंपा के आधार पर लंबित सभी नियुक्तियों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा. ये यवतमाल में आदि कर्मयोगी अभियान और 279 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और लाभ वितरण समारोह के दौरान बोल रहे थे. उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि दिसंबर 2026 तक यवतमाल जिले के प्रत्येक किसान को प्रतिदिन 12 घंटे बिजली मिलेगी. उन्होंने क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए शीघ्र सहायता का भी वायदा किया. और अब हम बढ़ते हैं आगे कोलकाता की ओर. गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने कोलकाता में भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी के जहाज एंड्रोथ सौंपे. एंड्रोथ ऐसे 8 युद्धपोतों की श्रृंखला में दूसरा है. पहला अन्नाला जीआरएसआई द्वारा पहले ही सौंप दिया गया था. आज भारतीय नौसेना की ओर से रियर एडमिरल रवनीश सेठ सीएसओ टेक ईएनसी ने एंड्रोथ को स्वीकार किया. इस पोत का नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह के एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है. ASW में लगभग 88% स्वदेशी सामग्री है जो आत्मनिर्भर भारत के प्रति समर्पण को दर्शाती है। कोलकाता के समाचारों के बाद अब रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली मुंबई और कोलकाता के मौसम का और शगुन चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद के मौसम का भी हम हाल जानेंगे। सबसे पहले बात दिल्ली के मौसम की तो आज बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 8 degrees. Hyderabad is also expected to have generally cloudy sky with moderate rain and the temperature, the minimum temperature will be 24 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees Celsius here.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बात 1960 की तो खनिज तेल उत्पादक आज ही के दिन देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की।
एंड इफ वी गो way back in the year 1752, Britain and its colonies adopted the Gregorian calendar when people went to bed on 2 September and then woke up on 14 September. In the year 1948, ceremony for initial phase of the construction of the permanent headquarters of the United Nations in New York City took place here. And in 1949, we have talked about, we'll talk about it in detail as well in a short while. In 1960, the Organization of Petroleum Exporting Countries was founded in Baghdad, Iraq.
जी, और 1999 में किरिबाती, नाउरू और टोंगा संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। और अगर बात की जाए सन 2016 की तो पैरा ओलंपिक 2016 में भारत के अब तक कुल 4 पदक हुए हैं।
And going a little back again, the popular American sitcom The Golden Girls debuted on American television and it was known for its focus on older women and for tackling timely topics. In 2000, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee gave a speech at US Congress. In 2000 again, Microsoft had released Windows Millennium Edition and it was the last DOS-based, DOS-based operating system from Microsoft.
और शगुन, जैसा कि हमने अभी समाचारों में हिंदी दिवस की बात की थी तो हम आपको बता दें कि आज ही के दिन हिंदी दिवस की शुरुआत हुई और भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ये दिवस मनाया भी जाने लगा। हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और प्रकृति की अगर बात की जाए तो ये उदार, ग्रहणशील, सहिष्णु और भारत की राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका भी है। कहीं कहीं इस दिन हिंदी पखवाड़ा और राष्ट्रभाषा सप्ताह भी मनाया जाता है और आज से जो है वो हर जगह शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पे सरकारी कार्यालय जो है वहाँ पर ये दिन मनाया जाता है और इसमें कई तरह के जो आयोजन है वो किए जाते हैं, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो या फिर
बिल्कुल।
तो इस पर जो है वो हिंदी को जागरूकता देने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है इस दिन को मनाना।
यस, टू प्रमोट हिंदी एंड फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड प्राइड इन वेल इन इंडियाज लिंग्विस्टिक हेरिटेज। एंड एज फरत वाज टेलिंग अस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, दे होस्ट वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स, एज शी वाज टेलिंग अस, निबंध मेकिंग, राइटिंग, राइट, एंड स्पीचेस आल्सो, पोएट्री रेसिटेशंस एंड singing competitions as well. So listeners, now we'll talk about the personalities, the people related to today in some way or the other. First, we are remembering today, listeners, Walter E. Ferry Lewis. Well, a country blues guitarist that I have chosen to tell you about, listeners, and also a songwriter. Well, he was one of the earliest of the blues musicians, this particular genre of music. This is blues, and he was active in the 1920s to be brought out of retirement, and then he was given new opportunities to record the folk blues revival of the 1960s. I have chosen a beautiful song, listeners. This is Big Chief Blues.
I'm going away, baby, take me 7 long months to ride. I'm going away, baby, take me 7 long months to ride. January, February, March, May, June, July.
और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था अलमेर वल्ली का। भरतनाट्यम में ये पांडनलूर परंपरा के अग्रणी प्रस्तावक होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। लोगों ने उनके काम में गहराई, जुनून और सहजता लाने के लिए उनकी सराहना की। आज के सबसे रचनात्मक कलाकारों में से एक अलमेर वल्ली पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की शास्त्रीय नृत्यांगना भी है। उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख त्योहारों में प्रदर्शन किया और दुनिया की अधिकांश सांस्कृतिक राजधानियों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है। और अब हम आपको बता दें कि आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक ज्ञान चंद्र घोष का। ये अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के संस्थापक और सदस्य रहे। घोष के अनुसंधान कार्यों से ही उनका यश विज्ञान जगत में फैला था। ज्ञान चंद्र घोष द्वारा स्थापित तनुता का सिद्धांत घोष का तनुता सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है, यद्यपि इसमें पीछे बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ा।
Listeners, today we are also remembering another musician, Stephen Earl Gaines. Well, he is best known as a guitarist and also a backing vocalist with this particular rock band. This is Lynyrd Skynyrd, and this was in the year 1976 when they were active. He was active then, and his sister also, she was a backup vocalist with this particular band. And the song which I have chosen, this is a very simple song because the name of this particular song, it's Simple Man.
Mama told me when I was young, you sat beside me.
Well, we are listening to Stephen Earl Gaines' guitar part here, and today it's his birth anniversary, as I was telling you, listeners.
और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं चंद्र सिंह बिरकाली की। आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि रहे ये। इनकी सबसे प्रसिद्ध प्रकृति परक रचनाएं लू, डाफर और बादली हैं। चंद्र सिंह बिरकाली ने महाकवि कालिदास के कई नाटकों का राजस्थानी में भी अनुवाद किया था। बादली और लू उनकी दो महान काव्य रचनाएं हैं जिन्होंने सारे देश का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित किया था। और आज के दिन हमें अलविदा कहा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे ये। उन्हें उनके प्रसिद्ध उपन्यास गण देवता के लिए 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताराशंकर बंदोपाध्याय को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
Well, yes, Tarashankar Bandyopadhyay, he wrote around 65 novels, and this also included story books and 12 plays, essay books as well, and autobiographies, travel stories also, and also composed several songs, and he, like most notably, wrote in Bengali language. Listeners, today it's also an actor's birthday, and he is Sam Neill. Well, the producer, director and also a screenwriter, he has played his part in Jurassic Park movies and is considered an international leading man and is regarded as one of the most versatile actors of his particular generation. And other movies which I would like to tell you, listeners, these include The Piano, The Hunt for Red October, In the Mouth of Madness, and I was telling you about his role in Jurassic Park. He actually came to international prominence as Dr. Alan Grant in Jurassic Park, reprising the role in Jurassic Park 3, this came in 2001, and also Jurassic World Dominion, this came in 2022. Also, he has appeared in numerous television series in guest and recurring roles. These include The Simpsons. This was 1994 television program. The Tudors and Happy Town. So today, it's his birthday.
और अब हम हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार रामकृष्ण शिंदे की बात कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत से गुणी संगीतकारों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने मौका मिलते ही बेहद मधुर धुनें रची, लेकिन तमाम काबिलियत और संगीत का भरपूर ज्ञान होने के बावजूद सिने जगत ने उन्हें एक जगह नहीं मिल पाई जो वो हकदार थे। इनकी एकमात्र वजह ये थी कि उनमें शायद इस चकाचौंध की भरी दुनिया में खुद को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, तो वो चीज वो नहीं कर पाए। लेकिन रामकृष्ण शिंदे ने जो है अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाया और बहुत से संगीतकारों के साथ वो मिलकर खड़े हुए और 1947 में बनी फिल्म मैनेजर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। बिहारी, किसकी जीत, गौना, खौफनाक जंगल, पुलिस स्टेशन और कैप्टन इंडिया मुख्य फिल्मों में शामिल रहे। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म बिहारी से उनका ये प्यारा सा संगीतमय संगीत। बहुत खूब बुलबुल सुना रहा है और दिल को रुला रहा है। जो पुराने गानों की बात होती थी ना शगुन, वो अपने आप में ही जो है अलग होती थी,
लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस।
जी बिल्कुल।
लेट मी टॉक अबाउट फरहत, अनदर म्यूजिशियन नाउ, एडवर्ड किंग, वेल एड किंग, गिटारिस्ट फॉर द साइकेडेलिक रॉक बैंड स्ट्रॉबेरी अलार्म क्लॉक एंड देन अ गिटारिस्ट एंड बेसिस्ट फॉर सदर्न रॉक बैंड लिनिड स्किनेड। वेल टेलिंग यू अ लिटिल बिट अबाउट द साइकेडेलिक एक्सपीरियंस, द साइकेडेलिक सॉन्ग्स, वेल दे इंक्लूड, दे आर कैरेक्टराइज बाई सोनिक एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्टोर्शन एंड एक्सटेंडेड इंस्ट्रूमेंटल सोलोज एंड सरियल लिरिक्स। वेल एंड दीज अदर आर्टिस्ट, दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड म्यूजिक इन दिस पर्टिकुलर जॉनरा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट एडवर्ड King. Today it's his birth anniversary. Listen in to this particular creation by him.
Who cares for the games we choose? Little to win, but nothing to lose. If the sense of compliments and meaningless bounds, turn on, tune in, turn your eyes around. Look what you saw, look what you saw.
I was telling you about psychedelic rock features experimental sounds, studio effects like distortion and freeform jams, and I was talking about Edward King. Well, today listeners, it's also Ayushman Khurana's birthday, and well, he has worked in numerous films here, and also the accolades. He is the recipient of several awards, including a National Film Award and 4 Filmfare Awards. And he made his film debut with a romantic comedy. This was Vicky Donor. And after a brief setback, he starred in the commercially critical successful movie. This was Dam Laga Ke Haisha. This came in the year 2015. And then he finally established himself with the financially successful comedy, which was Bareli Ki Barfi. This came in the year 2017. And the song which I have chosen, this is from his film Vicky Donor Only, which he sung. So let's listen into that.
Pani da rang vekh ke, pani da rang vekh ke, akhiyan jo anjur udde, akhiyan jo anjur udde.
और श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और अंत में चलते चलते हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि दफन करने से पहले जरा नब्ज जांच लेना, अदाकार उम्दा है कहीं किरदार में ना हो। और इसके साथ ही हम आपसे अनुमति लेना चाहेंगे, अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
एंड फरहत शेयर्ड सच अ ब्यूटीफुल थॉट विद ऑल ऑफ अस। आल्सो लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, विच इज आवर Hindi News Bulletin, and followed by Morning News in English at 8:15 a.m. We thank you so much, listeners, for tuning in, and we hope you have a wonderful, wonderful day ahead.
जी बिल्कुल शगुन, और आज हिंदी दिवस भी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी में ही बात करें, तो इससे थोड़ा सा हिंदी का महत्व है वो और बढ़ेगा। और अब जो है घड़ी की सुइयां जो है इशारा कर रही हैं कि हमें अपने श्रोताओं को कहना होगा अलविदा।
नमस्कार।